Santi, 4 June 2025, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बनना चाहें तो बन सकते हैं। जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ये लिंक गूगल मीट और यूट्यूब का लाइव का है। दोनों में से जिस भी लिंक पर आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। ये दोनों लिंक चारों टाइम रोजाना के लिए एक ही रहते हैं। और यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई होती है तो आप इसी वीडियो में चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। आज की मुरली का साथ मीठा मीठा बाबा कैसे मीठे बच्चे बेहद के सुखों के लिए, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज, क्योंकि सुख हमें बेहद के चाहिए तो हमें बेहद के सुखों के लिए नॉलेज भी कौन सी चाहिए, बेहद की चाहिए। बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज चाहिए और वो नॉलेज मिलती है एक परम पिता परम आत्मा शिव बाबा, क्योंकि वही एक है जो बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान का सागर है, जो केवल और केवल अल्टीमेट सुख है, सत्य है। और कोई हो ही नहीं सकता, ना है ना होगा। हर आत्मा यूनिक है परंतु हम यूनिक आत्माओं में वो एक ऐसी यूनिक आत्मा है जिसका कोई बाप नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई गुरु नहीं, जिसका ज्ञान कभी क्षय को प्राप्त होता नहीं, जिसके गुण और शक्तियां कभी क्षय को प्राप्त होती नहीं है। वो भी एक्टर पार्ट वो भी बजाता है, परंतु अभोक्ता का पार्ट होने के कारण उसको ये विशेषता मिलती। बाबा कहते हैं ये विशेषता मेरे पास इसलिए है कि मैं आपकी तरह भोक्ता नहीं, यदि मैं भी भोगूं तो ये विशेषताएं मेरे पास भी नहीं रहे, क्योंकि मेरा पार्ट है सारे संसार की आत्माओं को पतित से पावन बनाना, गिरती कला से चढ़ती कला में ले जाना। मेरा पार्ट है तुमको साक्षात्कार कराना। साक्षात्कार कराने का मतलब भी हमें समझ में आया कि जानकारी देना मेरा पार्ट है। साक्षात्कार कराना माना जानकारी देना। ये चाबी मेरे पास है, ये चाबी और किसी के पास नहीं। अब ये जानकारी मैं कैसे दूं, कैसे करूं, ये मेरा पार्ट है। किसको मैंने कैसे जानकारी देनी है, किसके माध्यम से जानकारी देनी है, ये मेरा रोल है। उसे कोई सीन दिखा करके दूं, या बोल करके दूं, या किसी के माध्यम से दूं, ये सारे माध्यम जो भी हैं वो परमात्मा की जानकारी देने के लिए। तो परमात्मा सबको जानकारी देते हैं और उस जानकारी का जो उद्देश्य होता है वो होता है राजयोग। जो परमात्मा आकर किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम से हमें जानकारी देते हैं वो जानकारी है राजयोग। अब उस राजयोग का कोई कितना उपयोग करता है ये इस आत्मा पर निर्भर करता है। वो उस राज योग से प्रजा योग बनाकर प्रजा बन जाए, दास दासी बन जाए, नौकर चाकर बन जाए, सतयुग का बने, त्रेता का बने, द्वापर का बने, कलयुग का बने, कितना भी 100% में 0 से 100 तक जितना भी पुरुषार्थ करे उसको प्राप्त कर सकता है। मेरा काम है मैंने उनको कैसे देना है, और आप आत्माओं का काम है कैसे लेना है, कितना लेना है, ये आप आत्माओं का अपना पार्ट है। ये पार्ट हर आत्मा का यूनिक है, उसने अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्ति करनी है। ये है आज की मुरली का सार, जिसके आधार से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब अपना पार्ट अपना रिकॉर्ड करेंगे। शांति। आज की मुरली का प्रश्न, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है, किस बात में बिल्कुल निराला है? ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय कुटुंब क्यों निराला है? उत्तर, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई एक रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का बच्चा है, लेकिन सब पढ़ रहे। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा, बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते। पढ़ाता क्या है? 84 जन्मों की कहानी सुनाता है, पढ़ाता है, कहानी सुनाता है, और बच्चे कहते हैं बाबा। अब बाबा बाप को भी कहा जाता है, बाबा दादा को भी कहा जाता है। बच्चे दादा को कहते हैं कहानी सुनो, टीचर को कहते हैं पढ़ाओ, और बाप आकर सबको अपना बनाते। अजीब परिवार है ये, बेहद का परिवार है, अजीब परिवार है। ऐसा परिवार दुनिया में और कोई दूसरा होता है? होता है कोई दूसरा ऐसा परिवार? इससे अच्छा या बुरा? अच्छा हो सकता है इससे कोई परिवार? इससे परिवार कोई अच्छा भी नहीं हो सकता, ऐसा परिवार भी नहीं हो सकता। बाकी जितने भी परिवार हैं वो इस परिवार से नीचे नहीं। अब अच्छे परिवार को छोड़कर कौन किसी दूसरे परिवार में जाए? कोई अच्छा परिवार मिल जाता तो हम छोड़ के चले जाते, इससे अच्छा परिवार कोई है ही नहीं। चलो इसी में रहना पड़ेगा। जी, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आज, ओ बृहस्पतिवार, आज बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार उसका नाम रख दिया है बृहस्पति। शब्द था बृहस्पति और दुनिया वालों ने उसका नाम रख दिया बृहस्पति। ये त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं, तुम हर हफ्ते मनाते, हर हफ्ते बृहस्पति देव मनाते, तो लिखाने का लालच होता है। बृहस्पति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप चैतन्य है, बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष हैं दुनिया में वो सब जड़ होते हैं, ये है चैतन्य। इनको कहा जाता है वृक्षपति, इनकी आयु है 5000 वर्ष, और ये वृक्ष चार भागों में है, चार भाग है इस वृक्ष के। हर चीज चार भाग में होती है, ये दुनिया में, दुनिया भी चार भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है, दुनिया कितनी बड़ी है ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। ये है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा। ये जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं ये नई दुनिया के लिए नई शिक्षा दे रहे हैं। और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नहीं है। हमें नई दुनिया में देवी देवता बनना है, नई दुनिया के राजा बनना है, नई दुनिया में अपना श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, उसके लिए शिक्षा भी नहीं है। और भाषा तो हिंदी है, नई दुनिया की शिक्षा देने के लिए भाषा कौन सी है? हिंदी। बाबा ने समझाया है जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी वहां कोई संस्कृत नहीं है, वहां कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहां है ना, जो यहां है वे फिर वहां नहीं हो सकते। बड़ी क्लियर लाइन बाबा कह रहे हैं, जो यहां है वो वहां नहीं हो सकती। संस्कृत नहीं हो सकती तो क्या वहां हिंदी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते हैं ये है वृक्षपति, उनको उनका फादर रक्ता भी कहते हैं झाड़ का। ये है चैतन्य बीज रूप, वे सब होते हैं जड़। बच्चों की सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। इस समय नॉलेज ना होने के कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। ये है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से काग विद्या समान सुख मिलता है। तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से अक्षर सिर्फ तुम सुनते, फिर से अक्षर सिर्फ तुम सुनते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए ये राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे, ये भी तुम जानते हो। ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकार तो बच्चे आत्माएं भी हैं। बाबा हमारा निराकार है, ज्ञान का सागर है, हम आत्माएं भी तो निराकार हैं। लेकिन सबको अपना अपना शरीर है, इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है। और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकता जैसे सिर्फ बाबा जन्म लेते हैं, ऐसा जन्म और कोई आत्मा ले नहीं सकती। कैसे लेते हैं जन्म? दूसरे के शरीर का आधार लेते हैं, अपना शरीर नहीं बना सकते। सीखा ही नहीं कि मैं अपना शरीर कैसे बनाऊं, संकल्प भी नहीं आता कि मैं अपना शरीर कैसे बनाऊं या बना लूं। प्रवेश करते हैं बच्चे बच्चों को आत्माओं को तनुक बैठ समझाते हैं और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह ना सके। कोई भी धर्म वाला हो जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है, जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है, वो तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे, वो तो गांधी को भी बापू कहते थे। म्युनिसिपैलिटी के मेयर के को भी फादर कह देते हैं, परंतु वे फादर है, सब देहधारी हैं। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हम तो पढ़ाते हैं, बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। ये बाप आकर पढ़ाते भी हैं आत्माओं को। यह है ईश्वरीय कुटुंब। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, तुम बच्चे हो गए, कहते हैं बाबा हम एक रोज का बच्चा, हम एक रोज का बच्चा हूं, आठ रोज का बच्चा हूं, मास का बच्चा, एक महीने का बच्चा, पहले जरूर छोटा ही होगा, बल दो चार दिन का बच्चा ही है, परंतु आर्जन तो आपके बड़े हैं ना, इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। कोई तो बच्चा पैदा हो बेचारा पढ़ ही नहीं सकता, सुन ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता, परंतु यहाँ तो चाहे एक दिन का बच्चा है, दो दिन का बच्चा है, दस दिन का बच्चा है, महीने का बच्चा है, उनके आर्जन तो बड़े हैं, वो तो पढ़ सकते हैं, उनको तो पढ़ाई चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते, तुम भी पढ़ते हो, बाप के बच्चे बने, फिर बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। बाप कहते हैं मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर और फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए, जिससे ही फिर ये टीचर्स निकले हैं, जिनको पंडे कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, पंडे कहते हैं, वे भी सबको पढ़ाते रहते हैं। जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे, जो जानते जाएंगे उनको पढ़ाते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना ही ये है कि दो बाप है ना, कितने बाप हैं, दो बाप है ना, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया, बड़ा कौन हो गया, बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया, जिसको भगवान कहा जाता है, जिसको भगवान कहा जाता है। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है, किसी को पता नहीं, कितनी कमाल की बात है, हमें पारलौकिक बाप मिल गया है और दुनिया में किसी को पता ही नहीं है, हमारे परिवार वालों को भी पता नहीं है, हमारे पड़ोसियों को भी पता नहीं है कि इनको भगवान पढ़ाते हैं। धीरे धीरे जानते जाएंगे, धीरे धीरे जानते जाएंगे, तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाबा, हम आत्माओं का बाबा पढ़ाते हैं, हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगी, ऊंच से ऊंच देवता बनेंगे, ऊंच से ऊंच बनने के लिए आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते, किसी ना किसी बात में संकेत आ जाता है या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते हैं, काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। काम महाशत्रु है जिसके कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाप कहते हैं, कल्प कल्प तुम अब लाए, माताएं ही पुकारती हो। कहते हैं, बाबा हमको नंगन होने से बचाओ। बाप कहते हैं, याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं, याद से ही बल आता जाएगा, माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधनों से छूट कर आते हैं, फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है। फिर आकर से बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं, ये भी आदत पड़ जानी चाहिए। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम से बाबा पास जाते हैं, वे इस ब्रह्मा स्थान में आते हैं, हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। किसके आगे बैठे हैं? शिव बाबा के आगे बैठे हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, अपने को क्या समझना है? आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलना, मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझ समझो, आत्म अभिमानी भाव। ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, ये है मेहनत। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ये तो एक ही मेहनत है, सिर्फ याद। ये बहुत सहज से सहज है। और बाबा को मालूम है, सहज से सहज है, बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। दो बातें हो सकती हैं, सहज भी हो और डिफिकल्ट भी हो। हाँ जी, हाँ, वो जो ज्ञान में आ गए उनके लिए भी डिफिकल्ट बता रहे हैं बाबा से, उनके लिए नहीं है।
जो बाबा की आयमत में चलने की अनुमति होंगे उनके लिए सहज है, वो नहीं है जो उनके लिए डिफिकल्ट।
चलो इस पर
बाबा से प्यार
किसको होता है? क्या हमें बाबा से प्यार है? हाँ जी,
जिसको प्राप्ति होती है उसके लिए सहज है, उसको प्यार है।
प्राप्ति होती है तो सहज है, प्राप्ति नहीं होती है तो मुश्किल। प्राप्ति क्यों होती है? किसी को प्राप्ति होती है, किसी को नहीं होती है? यही तो सारी बात आ रही है कि श्रीमत पर चलने वाली बात पर तो पहली बात अटकी हुई है कि श्रीमत पर चलेगा कौन? यानी श्रीमत पर चलेगा कौन? क्योंकि जिसको बाबा से प्यार होगा, और बाबा से प्यार किसको होगा, उसका पहला आधार है जिससे स्वयं से प्यार। जिसे स्वयं से प्यार नहीं है वो बाबा से प्यार नहीं कर सकता। बाबा ने आकर हमें सबसे पहले अपने से प्यार करना नहीं सिखाया, बाबा ने हमें सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सिखाया। कैसे पता लगे कि मुझे अपने आप से प्यार है या नहीं है?
ऐसे जब हम खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, अपनी कमियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं,
जब मुझे समझ में आ जाए मुझे सुधरना है, मुझे सुधरना है, जिसको ये समझ में आ जाए वो अपने आप को सुधारने के स्टेप पर खड़ा हो, अगला स्टेप उठाने के लिए तैयार हो, तो उसे अपने से प्यार है। जो अपने आप को सुधारने के लिए सोच ही नहीं रहा तो उसे क्या प्यार है अपने आप से? उसे अपने से प्यार ही नहीं। प्यार होता तो बाबा की श्री मत पर चलता। शराबी को पता है मेरे शरीर का सत्यानाश करेगी, उसे प्यार है अपने आप से? उसे दारू से प्यार है, उसे अपने से प्यार नहीं है। जो अपने से प्यार करेगा वो अपना नुकसान नहीं करेगा, वो अपने में सुधार लाएगा, अपने को आगे बढ़ाएगा। बताओ कितने अच्छे बच्चे हम, विचार करना पड़ेगा ना, कितने अच्छे बच्चे हैं हम जो हम अपने आप को सुधारना ही नहीं चाहते, हम अपने से प्यार ही नहीं करते। किसी और को सुधारने के लिए तो बाबा नहीं कह रहे, बाबा तो ये तो नहीं कहते कि तुम अपने पति को सुधारो, अपने बच्चों को सुधारो, अपनी पत्नी को सुधारो, पड़ोसियों को सुधारो, किसी दूसरे को सुधारने के लिए कभी बाबा ने कहा है? तुम सुधरेंगे तो जग सुधरे, तुम अपने से प्यार करेंगे तो बड़ा पाप। क्या पढ़ाई पढ़ाता, मेरे को समझ में नहीं आती ये बातें, पहले तो बताया नहीं कभी, ऐसे तो कभी कहा नहीं अपने से प्यार करो, पर कैसे कैसे चुपके एक लाइन बोल देता, अपने से प्यार करो तो मेरे से प्यार होगा। जो अपने से प्यार नहीं करेगा वो परमात्मा से प्यार नहीं करेगा, परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चल, उसके लिए डिफिकल्ट है। जो अपने से प्यार करेगा करे ना करे हो जाएगा, पर अपने से प्यार करेगा, अपना सुधार करेगा तो बाबा से प्यार करेगा, क्योंकि हमारा सुधार बाबा के सिवाय और कोई करने का तरीका नहीं बता। तब आसान होगा। यदि मैं अपने आप को सुधार नहीं रहा हूं, बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहा हूं, मैं अपने आप को सुधारना नहीं चाहता हूं, मैंने समझ लिया जैसा हूं ठीक है ना, अपने आप को पक्का कर लिया, क्या क्यों चलूं बाबा की श्रीमत पर, ठीक है बड़ा टेढ़ा काम है, उसके लिए ये मुश्किल है। जो अपने आप को सुधारना ही नहीं चाहता उसके लिए मुश्किल, जो अपने आप अपने लिए सुधारना चाहता है उसके लिए आसान है। इससे शायद कोई बात होती नहीं, बाप को याद करना, बाबा कहते इससे शायद कोई बात होती नहीं। बच्चा पैदा होता है, मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बाबा निकलेगा बच्ची के मुख से, मां निकलेगी। आत्मा ने फीमेल को का शरीर लिया, धारण किया है, फीमेल मां के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है क्योंकि वर्षा मिलता है। अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है बाप से, आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में क्या होगी? मुश्किलात होगी। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। ये बातें बाप के सिवाय कोई बता ना सके, बाप के सिवाय कोई बता ना सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था, तुम सब आशिक थे उस माशूक के। सारी दुनिया आशिक है, सारी दुनिया क्या है? आशिक है एक माशूक। परमात्मा को सब परम पिता भी कहते हैं, बाप को आशिक नहीं कहा जाता। बाप समझाते हैं तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, तुम भक्ति मार्ग में क्या थे? आशिक थे, अभी भी हैं बहुत। परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें बहुत मूंझते, इसमें बहुत मूंझते हैं। गणेश हनुमान आदि को परमात्मा कहे एकदम सूत मुझा दिया है। परमात्मा कहकर क्या कर दिया है? एकदम सूत मुझा दिया है, सिवाय एक के कोई ठीक कर ना सके, सिवाय एक के कोई दूसरा ठीक कर ना सके। कोई की ताकत नहीं, बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते, बच्चे फिर क्या करते हैं? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते और समझाने के लायक बनते, समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, हूबहु कल्प पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो। फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, उनको अमर लोक कहा जाता है। तुम काल पर विजय पाते हो, वहां कभी अकाल मृत्यु होती नहीं, वहां कभी अकाल मृत्यु होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए, इस पढ़ाई में क्या होनी चाहिए? बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है, सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस ये नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ, ये नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है। बाकी सब है बाई प्लास, बाकी सब क्या है? बाई प्लास। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं, तुम ही ऊंच से हाँ जी शाखाएं, 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 जैसे एक के दो पर दो पत्ते चार पत्ते बढ़ते जाते हैं ना शाखाएं। सब है बाई प्लास, क्योंकि सभी धर्म यहीं से निकलते। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं, तुम ही ऊंच से ऊंच फिर नीच बने हो। डबल सिरताज, राल और फिर बिल्कुल ही रंक। अब भारत रंक से भिखारी, रंक माना भिखारी है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, सतयुग नेता डबल सिरताज महाराजा महारानी का राज्य। सब मानते हैं आदि देव ब्रह्मा को नाम बहुत दिए, आदि देव ब्रह्मा को महावीर भी कहते हैं, महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान को, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के फल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला ना सके। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। पांच विकारों रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं, एक मनुष्य की बात नहीं। तुम हर एक को धनुष तोड़ना है। अब हमने कोई सीता से शादी करनी है क्या? अर्जुन ने धनुष तोड़ा, इसने बने अर्जुन ने तो सिर्फ धागा चढ़ाया था, राम ने धनुष तोड़ा था सीता के लिए। अब हमने क्या धनुष तोड़ना है भाई? अच्छा जी, धनुष तोड़ने का मतलब है माया पर जीत पानी, माया पर जीत पाना माना धनुष तोड़ना। धनुष तोड़ना माना बहुत बड़ा काम करना, सबसे बड़ी मेहनत वाला काम है धनुष तोड़ना, क्योंकि कोई नहीं कर सका, उसको राम ने करके दिखाया। धनुष तोड़ने का मतलब है ऐसा काम करना जो दूसरा कोई कर ना सके। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यूरोपवासी कैसे लड़ते हैं? भारत में कौरवों और यवनों की लड़ाई है, गाया भी हुआ है, रक्त की नदियां बहती हैं, दूध की भी नदियां बहती हैं बहेंगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ, उनको फिर नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया है। है एक ही विष्णु के दो रूप, पारसनाथ पारसनाथनी, पारसनाथ पारसनाथनी, वे है पशुपति नाथ, पति पशुपति नाथ पत्नी, पशुपति नाथ पति पशुपति नाथ पत्नी। लाइन समझ में आई है? पत्नी को भी पशुपति नाथ कहा है और पति को भी पशुपति नाथ कहा। उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं, एक लेप भी बनाते हैं। अब लेप में खीर दूध कहाँ से आया? बड़े दिन पर उस लेप में दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं खीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है। अर्थ कुछ भी नहीं, अर्थ कुछ भी नहीं। चार भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो ना, बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया का तूफान, संशय माना क्या है? माया का तूफान। तुम हमको बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं, बाप कहते हैं माँ मेकम राज करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। चौरासी के चक्र को भी याद करना है, चौरासी के चक्र को भी याद करना है। बाप को कहा जाता है पतित पावन ज्ञान का साथ। दो चीज हो गई, पतितों को पावन बनाते और 84 के चक्र को का ज्ञान सुनाते, ये भी तुम बच्चे जानते हो। 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इनकी एंड नहीं है, ये भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कितना मीठा है, उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाप भी है। अब बाप कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फार कति दे देते, ऐसे मुझ बाप को भी क्या करते हैं, फार कति दे देते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, गोया फारकति दे देते हैं। कितने बेसमझ हैं, जो अक्लमंद बच्चे हैं, जो अक्लमंद बच्चे हैं वे सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वे फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी हैं कि ये पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या करें, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे, बड़े जोर से तैयारी हो रही है, बड़े जोर से तैयारियां हो रही हैं, हर प्रकार से तैयारी होती है ना, दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती है, दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती है, बढ़ती जाती है। कहते भी हैं ऐसी चीजें बनाई हैं जो पट से सबको खलास कर देंगे, पट से सबको खलास कर देंगे। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती, ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती, राजाई स्थापन होनी है, तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं, तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं, ये भी तैयारी करते रहते हैं। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है, पिछाड़ी में तुम्हारा बहुत प्रभाव निकलने का है, गाया भी जाता है अहो प्रभु तेरी लीला, अहो प्रभु तेरी लीला, ये इसी समय का गायन है, ये भी गाया हुआ है, तुम्हारी गत मत न्यारी, तुम्हारी गत मत न्यारी, सब आत्माओं का पाठ न्यारा, सभी आत्माओं का पाठ क्या है, न्यारा है। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं कि मां एकम याद कर, मुझ एक को याद करो, मां एकम याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे, कहां श्रीमत कहां मनुष्यों की मत, कहां श्रीमत और कहां मनुष्यों की मत। तुम जानते हो, तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई कर ना सके। 100% पवित्रता, सुख, शांति 5000 वर्ष पहले मौसिक ब्रह्मा अनुसार स्थापन कर रहे हैं। कैसे सो आकर समझो, तुम बच्चे भी मददगार बनते हो जो बहुत मदद करेंगे। वे विजय माला के दाने बन जाते हैं। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीय थे, वे नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाप के आकर बने, एकदम भट्टी में आकर पड़े। ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई आ ना सके। जब बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होने चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया इसलिए नाम रख दिए। वंडर है ना, वंडर है ना, बाप ने सब के नाम रखे। अच्छा, मीठे मीठे छिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर एक, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिलाना सके, जो माया का तूफान हिलाना सके। अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी, सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। इसको खत्म करना है, अहम को खत्म करना है। अहम माना अहंकार और वहम माना, वहम माना चाहता है अहम माना तो मुझे समझ में आ गया, अहम माना तो अहंकार होता है। वहम माना किसको पता है?
अंधविश्वास।
और कौन बताएगा वहम माना? मेरे को याद आ रहा है वहम का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। ये क्या होता है, क्या बीमारी है ये? वहम का इलाज लुकमान हकीम, बड़ा वक्त हकीम हुआ है उसके लिए कहा जाता है, उसके पास भी इसका इलाज नहीं था। उसके कुछ सारी बीमारियों का इलाज था। डाउट का होना भाई, अंग्रेजी में गलत फहमी बोल रही हो। डाउट, शक, शक का कोई इलाज नहीं। वहम माना शक, वहम उर्दू का शब्द है। वहम माना शक, मुझे शक है, मुझे वहम है कि ये ऐसे करता होगा। भाई को रहता है ना, मेरा पति बेकार होगा, गड़बड़ होगा, इसका कोई इलाज नहीं। शक तो अलग बात है, परंतु डाउट का कोई इलाज नहीं। तो पति खराब भी हो सकता है परंतु सारे नहीं होते। मतलब कहने का है कि शक किसी को बैठ जाए कि मेरा पति खराब है या मेरा बच्चा खराब है, वो ये काम ऐसे करेगा, गलत करेगा और उसने किया होगा, तो उसका कोई इलाज। इसलिए बाबा कहते हैं अहम भी नहीं करना और वहम भी इन दोनों को खत्म कर। ये अहम और वहम कब खत्म होंगे? जब हमारा बाप पर निश्चय हो जाए कि बाप ने जो कहा है वो राइट, बस, और बाप ने कह दिया राइट इज राइट, रॉन्ग इज आल्सो राइट, अब वहम करने का मतलब खत्म, अहम भी खत्म और वहम भी खत्म। मैंने किया, अहंकार खत्म, मैंने नहीं किया, ड्रामा अनुसार सब कुछ हो रहा है, और वहम भी खत्म कि उसने किया होगा, गलत किया होगा, जो भी किया है वो राइट किया है, फिर शक करके क्यों दिमाग अपना खराब करे। रहम दिन बढ़ने वाले विश्व कल्याणकारी भाव, किसी भी अवगुण वाले, कड़ी संस्कार वाले, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानी करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, वे सर्व आत्माओं के प्रति लाफुल के साथ लवफुल होंगे, लाफुल के साथ लवफुल होंगे, कभी इस वहम में नहीं रहेंगे आएंगे, ये तो कभी बदल ही नहीं सकता, ये भी एक वहम है, मैं इसको ये नहीं बदल सकता। अरे भाई तेरे को किसने कहा ये नहीं बदल सकता? प्रकृति का नियम है, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर, तू बेकार का वहम पाल कर बैठा, ये नहीं सुधर सकता, ये नहीं बदल सकता। वो तो बदल हर वक्त रहा है, वो गलत रास्ते पर जा रहा है, वो अच्छे रास्ते पर भी आएगा, आएगा, पता है, जो गंदे गिरा है वो उठेगा भी से, जो उठा है वो गिरेगा भी से, जो पावन बना है वो पतित बनेगा, जो पतित बना है वो पावन भी। वहम अपने दिमाग से निकाल दो, ये तो है ही ऐसे, या ये कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ, ये अहंकार आ जाता है, सब कुछ नहीं, इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण के सेवा में सफल होते हैं। स्लोगन, जहां ब्राह्मणों ताकि तन मन धन का सहयोग है वहां सफलता साथ है। अव्यक्त इशारे, आत्मसिद्धि में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी तब वे बाप की तरफ आकर्षित होकर अहो प्रभु के गीत गाएंगी और देह बांध से सहज अर्पण हो जाएंगी। अहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य, इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंधों की स्मृति का त्याग कर देंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम